मैं सभी इकोनॉमिक एक्टिविस्ट को नमस्कार और सलाम कहती हूँ। उम्मीद है कि आपकी हालत बेहतरी और खुशहाली में होगी। आज हम एक और एजुकेशनल पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसकी टॉपिक है कस्टमर की प्रेजेंटेशन। पिछले एपिसोड में हमने कॉल के लिए तैयारी करने और सिर की अमल से मुतअल्लिक लीड्स पैदा करने पर बात की। हमने तीन मराहिल की वजाहत की और इस एपिसोड में हम छोटे मरहले यानी प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे और इससे मुतअल्लिक पॉइंट्स को दुरुस्त तरीक़े में समझेंगे। सेल्स का अमल 7 लेवल्स पर मुश्तमिल होता है और चौथा लेवल कस्टमर को प्रेजेंट करना है। मैं चाहती हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन की वर्ड से आशना करो। प्रेजेंटेशन का मतलब है पेश करना और प्रेजेंट का मतलब है दिखाना, यानी आपको प्रोडक्ट या माल। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश करेगी। ये दिखाना क्या जिस्मानी होगा, मतलब फिज़िकल होगा, या वर्चुअल, और आप अपने ब्रांड प्रोडक्ट और अपने पर्सनालिटी को कैसे दिखाते हो। मुश्तरी या कस्टमर वो है जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं। तो जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट हो जिसे आप किसी के सामने पेश करना चाहते हैं तो कुछ तरीक़ा होते हैं। सबसे पहले ये तय करें कि क्या गोल है ये स्टेप्स का। जैसे मैंने पिछले वीक भी वजाहत की थी कि फ़रूख़ के साथ लेवल्स एक मकसद या गोल के लिए है और वो गोल प्रोडक्ट की फ़रूख़्त है। मैंने बार बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस बात को लिख लिए कि मेरा गोल प्रोडक्ट की सेलिंग है, लेकिन हर स्टेप्स का अपना एक स्पेसिफिक गोल होता है। प्रेजेंटेशन की मरहले में हमारा गोल क्या है? यहाँ गोल ये है कि कस्टमर को इस अमल में इंगेज करें। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि किस तरह वर्ड्स की ताकत अहम है। उम्मीद है कि आपने वो पॉडकास्ट को गौर से सुनी होगी। जब मैं कहती हूँ कि कस्टमर के साथ इंगेज होना, तो बाज़ औक़ात आपके माइंड में एक नेगेटिव इमेजिनेशन आता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस सही तरीक़े से समझें और इस्तेमाल करें। इस प्रेजेंटेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम कस्टमर की मुकम्मल इंगेज हासिल करें ताकि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को समझ सके। हमने इससे पहले भी एक बड़ा आदमी की एक कौल भी ज़िक्र किया कि सुनो, समझो, यकीन करो और उस पर अमल करो ताकि आप सक्सेसफुल हो जाए। कस्टमर सुनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर सुने। तो प्रेजेंटेशन में हमारा ये काम है कि हम कस्टमर को ऐसा मैसेज दे कि वो मुकम्मल तौर पर समझ सके। ये सब सीखने के लिए आप आरआर ब्रांडिंग वेबसाइट की मीटिंग सेक्शन में प्रेजेंट करें और देखिए कि दूसरे कैसे प्रेजेंट करते हैं। सीखें और फिर ख़ुद इसे आजमाएं। एक और बड़ा आदमी का कौल है कि सबसे आसान काम दूसरों की गलतियों पर तनकीद करना। तो जब आप किसी की प्रेजेंटेशन सुने, सबसे आसान काम है गलती तलाश करना। जैसे कि मैच होता है फुटबॉल या क्रिकेट का, जो इनका तमाशा करते हैं बोलता है ये काम क्यों किया, ऐसे क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, क्यों क्यों क्यों। बस वो हमेशा एरर्स निकालने के चक्कर में होता है। आपसे बहुत लोग एरर्स निकालते होंगे, शायद आपकी फैमिली आप इस इराद निकालती हो, आपके फ्रेंड्स आपसे एरर्स निकालते हो, ये काम क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, लेकिन वो ख़ुद कभी मैदान में नहीं उतरते, कभी अमली तौर पर कुछ नहीं करते, वो ख़ुद कभी अपनी सक्सेसफुल के लिए यकीन से कुछ करते ही नहीं, बस बैठकर आपको देखते हैं और एरर्स निकालते हैं। ये लोग ख़ुद कोई एक्शन नहीं लेते, बस बैठ रहते हैं एरर्स निकालने के लिए। मेरे अजीज़ों, मेरी बात को याद रखो, इराद और एरर्स निकालने सबसे आसान काम है। तो जब तुम्हें कोई एरर निकालने वाला दिखाई दे, हैरान ना होना, वो कोई जीनियन नहीं है। ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। जैसे एक बच्चे अपनी माँ से कहे कि मेरी कुकिंग में इराद निकाल, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक इतने एरर्स निकाल देगा कि तुम थक जाओगे। तो याद रखो, एरर निकालना आसान तरीन काम है। अब अमल करे दिखाओ। जब एक बच्चे ख़ुद खाना पकाएगा तब उससे समझ आएगी कि कुकिंग करना कितना मुश्किल है। मीटिंग में बैठना और एरर निकालना सबसे आसान काम है। एरर तब निकालना जब कोई तुमसे पूछे, और तब भी उससे अंदाज में बताओ कि वो नाराज़ ना हो। अगर किसी ने नहीं पूछा तो एरर अपने दिल में रखो और सोचो कि जब तुम प्रेजेंटेशन दोगे तो ये इराद तुम्हारे अंदर ना हो। मुझे मालूम है कि एरर कहाँ है, लेकिन मैं दूसरे शख्स को नहीं बताती क्योंकि उसने मुझसे नहीं मांगा। अपने आप से कहो कि शायद तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, लेकिन उस्ताद ने मुझे सिखाया कि इराद निकालना सबसे आसान काम है। जब तुम प्रेजेंटेशन दो तो तुम्हारे सामने तुमसे एरर निकालेंगे। ठीक है, निकालें, ये लोग तुम्हें मुफ्त में नकद करेंगे, वरना तो तुम्हें किसी से मशवरा लेने के लिए पैसा देने पड़ती है। उम्मीद है कि तुमने पिछले पॉडकास्ट को स्टेप बाय स्टेप सुना और इस पर प्रैक्टिस की होगी। कहो मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे कान खुले हैं, मैं अपनी एरर्स कबूल करता हूँ, मुझे बताओ ताकि मैं खुद को बेहतर करूँ, मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद को ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि एरर कहाँ है। आपको ख़ुद को मुशावरत के लिए पेश करना चाहिए, बात करनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए। यकीनन कुछ लोग आएंगे जो इराद और एरर निकालेंगे, उन एरर्स को एक्सेप्ट करो और ख़ुद को चेंज करो, मजबूत बनो। आइए अब बात आगे बढ़ाएं। उस्ताद हमने समझा कि प्रेजेंटेशन में हमारे गोल ये है कि हमने कस्टमर को इंगेज करें, लेकिन इसका मतलब क्या है, आपका मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो कस्टमर मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज से वाकिफ हो, मैं क्या करूं ताकि वो मेरे साथ इंगेज हो। अगर कस्टमर इंगेज ना हो तो क्या होगा, क्योंकि अगर वो इंगेज ना हो, ना समझ पाए, ना बिलीव करे, तो वो अमल भी नहीं करेगा। मैं वापस आता हूँ। अपने इस की वर्ड की तरफ जिसमें आपको एक लफ्ज़ से आशना कराई थी, यानी अटेंशन। आपको अपने कस्टमर पर अटेंशन देने हैं कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखते हैं और जिन्हें नेगोशिएशन में इस्तेमाल करके आप कस्टमर की अटेंशन हासिल कर सकें ताकि वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदे। अब मैं एक सिनेरियो के तौर पर हर एक्सेप्ट को देख रही हूँ ताकि इसे सही तरह से एग्जीक्यूट कर सकूँ। और प्रेजेंटेशन का स्टेप्स बहुत अहम है। हमने बहुत सारे पैसे ब्रांडिंग में खर्च किए, लीड्स जनरेट करने के लिए तैयार हुए, ट्रेनिंग ली ताकि कॉल की जाए और फिर कॉल किया ताकि हम बेच सकें। लेकिन ये सेल एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करती है ताकि हम अटेंशन कैप्चर कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप्स को सही तरह फॉलो करें। एक प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव या सेल पर्सन ख़ुद को ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो एक पर्सन हो या मल्टीपल पीपल। प्रेजेंटेशन का मतलब है आपकी प्रेजेंटेशन। इसमें आपको कम्युनिकेशन, टोन, स्किल्स और नेगोशिएशन टेक्निक्स इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आपको ये जानना चाहिए कि किस टोन के साथ किस मॉडल में वर्ड्स को अलाइन करें, कहाँ आपकी बात हाई जाए और कहाँ लो हो। सेल साइकोलॉजी में आप किसी पार्ट ऑफ ब्रेन को इंगेज कर रहे हैं और क्यों। आप चाहते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा हो जिससे लास्ट में सेल हो जाए और कस्टमर आपसे ख़रीद ले। ये सब कुछ एक इल्म है, सेल्स का साइंस। आपको ये समझाना है कि आप इंट्रोडक्शन के बाद ऑडियंस से इंगेजमेंट बनाएं और ये इंगेजमेंट सिर्फ पहले 6 सेकंड्स में हो जाता है। एक सीक्रेट बताती हूँ, तमाम अहम चीज़ें इन पहले 6 सेकंड्स में हो जाती है। जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको कितने सेकेंड्स दरकार होते हैं ये डिसाइड करने के लिए आपको वीडियो देखेंगे या नहीं। या जब आप किसी पॉडकास्ट को सुन रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह प्रेजेंटेशन में भी होता है। सिर्फ 6 सेकंड्स, अगर कोई इन 6 सेकंड्स में फैसला ना कर सके तो 1 मिनट में वो फैसला ले लेगा, और अगर 1 मिनट में भी ना कर सका तो यकीनन 3 मिनट में कर लेगा। तो आपको इतना कैपेबल होना चाहिए आप पहले 6 सेकंड्स में कस्टमर की अटेंशन हासिल कर ले, फिर 1 मिनट तक अपनी बात जारी रखें और दिलचस्प बनाएं, फिर 3 मिनट तक उसे कैप्टिवेटेड रखें और फिर 3 मिनट को 10 मिनट तक बढ़ा सकें। इसका मतलब है आपको मीटिंग्स में प्रैक्टिस करनी है। मीटिंग में आए बात करें इस तरह के कोई बोर ना हो, किसी का सर नीचे ना हो और कोई सो ना जाए। कोई मीटिंग्स में स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि 1 घंटे कब गुज़र गया। उन्हें वक्त और टाइम का एहसास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग में इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ہم 4-5-6 گھنٹے کی میٹنگز کرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے 1 گھنٹے گزر رہا. آپ کو یہ ٹیکنیک سیکھنی ہے تاکہ آپ کی پریزنٹیشن اتنی پاورفل ہو کہ لوگ انگیج رہے, آپ سے محبت کرے اور آپ کو سننا چاہتے ہو. جب کوئی انٹرویو دینے آتے ہیں ہم پہلے 30 سیکنڈز میں جان لیتے ہیں کہ وہ کام کی لائق ہے یا نہیں. وہ بندے تو اسٹارٹ کرتا ہے اور کئی منٹس بات کرتا ہے لیکن ہم 30 سیکنڈز میں فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ کو بھی اتنا کیپیبل بننا ہے کہ ان چند سیکنڈز میں جان سکے کہ آپ کے سامنے والا پرسن فیک ہے یا نہیں. یہ اسکل حاصل کرنا بہت مشکل ہے لیکن جب آپ لوگوں کے انٹینشنز اور کیپیبلٹیز کو پہچاننا سیکھ لیں تو آپ کو لیٹر انہیں فائر نہیں کرنا پڑے گا. آپ انہیں آخر تک اپنے ساتھ رکھ سکیں گے. اب ہم پریزنٹیشن کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں آپ پروڈکٹ کی کیریکٹرسٹک کو ایکسپلین کرنے لیے خاص ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں. جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیٹلوگ یا بروشور پیش کرتے ہیں یا پروڈکٹ سیمپلز دکھاتے ہیں. سیمپل بروشور بھیجو, تصویریں شیئر کرو اور اپنے سیمپلز انٹروڈیوس کرو. یہ سب عام چیزیں ہیں اور میں نے اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں پریزنٹیشن کی طریقے کے بارے میں بات کی ہے. اچھی طرح سے دھیان دو اور ان فائلز کو سنو کیونکہ میں نے تمہارے لیے کچھ رسپانسبلٹی ڈیفائن کی تھی. ایک بزنس مین کی بہت سے ذمہ داریاں ہوتی ہے اور اسے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہونا چاہیے. پریزنٹیشن ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. تمہیں اس اسپیس کو گرم رکھنا ہے, نیگوشیشن کو لائیولی رکھنا ہے اور آخر میں بات کو سمرائز کرنا ہے. یہاں تمہیں اپنے پروڈکٹ کی پرائس, اویلیبل ڈسکاؤنٹس اور کنٹیکٹ ڈیٹیلس کے بارے میں انفارم کرنا ہوگا کہ لوگ تم سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. میں بعض اوقات میٹنگس میں دیکھتا ہوں کہ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میں یہ ہوں اور یہ میرا کنٹیکٹ نمبر ہے. یہ کس قسم کی پریزنٹیشن ہے؟ یہ بدترین قسم کی پریزنٹیشن ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف وقتی کام کر رہا ہے. مت کرو, اس سے تمہارا برانڈ خراب ہو جاتا ہے اور لوگ فوراً پہچان جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ میری فائل سن رہے ہیں اور میں انہیں بتا رہی ہوں. میں ایک پوری کمیونٹی کو اس طرح سکھا رہا ہوں اور تم وہی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جو میں لوگوں کو بچنے کے لیے سکھا رہی ہوں. ان لوگوں نے تمہارا انداز سمجھ لیا ہے اور تمہیں بیچنا مشکل لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو میٹنگز میں بیٹھے ہیں سب ٹریننگ یافتہ ہے. تم سوچتے ہو کہ تم نے کہیں اور یہ حرکت کی اور وہاں کے لوگ خریدنے میں جلدی کر گئی, لیکن یہاں نہیں کیونکہ یہ سب لوگ ٹریننگ لیا ہے. لہٰذا ان لوگوں کو بیچنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ سب نیگوشیشن کی ماہر بن چکے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ تم مارکیٹ میں رہنے کے لیے آئے ہو, اور اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو مضبوط رہو, کمزور نہ رہو. अब हम प्रेजेंटेशन के उसूलों की तरफ आते हैं। पहला उसूल है अपने एक्साइटमेंट और इंगेजमेंट को जाहिर करना। जब पहली बार किसी को प्रेजेंटेशन देना हो तो यकीन जानो कि मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है। बिल्कुल ये फितरी है कि पहली बार प्रेजेंटेशन या ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते वक़्त इंसान को घबराहट होते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ तो यकीनन वो पहले से कुछ एक्सपीरियंस रखते हो गए। लेकिन जब तुम बार बार ये करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आखिरकार तुम इस काबिल हो जाते हो कि अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सको। स्टार्ट में मुश्किल लगता है लेकिन बार बार की प्रैक्टिस से तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। जब तुम अपने ऊपर काबू पिलाते हो तो तुम्हारी डिस्कशन और गुफ्तगू में एक नेचुरल फॉलो आ जाता है और फिर तुम अपने ऑडियंस के साथ बेहतर और मौसर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। मुझे भी याद है जब मैंने अपनी पहली बड़ी तकरीर की थी, मेरे सामने तकरीबन 500 लोग बैठे थे जो उम्र में हमारे वालिदैन जैसे थे। वो लम्हे वाकई नर्व रैकिंग था, लेकिन जैसे जैसे मैंने बातचीत शुरू की, मैंने अपनी एतमाद को बढ़ता हुआ महसूस किया। वक्त के साथ तुम भी इसे एतमाद को हासिल कर सकते हैं। ये मेरे लिए वाकई खौफनाक थी। मैंने 15 मिनट बात की, चाहती थी कि ये 15 मिनट जल्दी ख़त्म हो जितना एक मिनट हो। ये मेरे लिए बहुत खौफनाक था लेकिन प्रैक्टिस और दराई से मैं इस पर काबू पा गया। आज मेरे पास 6 घंटे और 7 घंटे की मीटिंग है, इसलिए प्यारे दोस्तों, आप प्रैक्टिस और दुराई के ज़रिए एक अच्छे कोच की मदद से इस कहानी का सामने कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि तमाम तजारतें इस दुनिया में आपके लिए मौजूद होगी। दूसरा उसूल ये है कि ऑडियंस की ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज करना है। मैं बार बार लफ्ज़ अटेंशन पर जोर दे रही हूँ। आप कहते हैं कि उस्ताद मैंने समझ लिया कि अटेंशन का क्या मतलब है, लेकिन जो चीज़ आप अटेंशन की लफ्ज़ से समझते हैं वो मेरी मुराद नहीं है। लिहाजा जब आप लफ्ज़ सुनते हैं तो आपकी एक तशरीह होती है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वर्ड को एक और तशरीह के साथ पेश करें। मेरी तशरीह दुरुस्त होने चाहिए। ये ऑडियंस की ज़रूरियात पर अटेंशन मरकूज फोकस करने के बारे में है। कस्टमर की ज़रूरियात क्या है, ये हमेशा अपने जहन में रखें कि मेरा एम और गोल क्या है। मैं कस्टमर को बेचना चाहता हूँ। क्या इस प्रोडक्ट की इसे ज़रूरत है, क्या इसे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, या इसकी मार्जिन के बारे में क्या इसकी ज़रूरत थी, ये कैसे समझा जाए। सवाल पूछने से मैंने कई स्टेशंस में आपको सवाल पूछने की टेक्निक सिखाई है। बराए करम इन टेक्निकों को इस्तेमाल करें, यूज़ करें, सीखें और उनका यूज़ करें। फिर आप देखेंगे कि कस्टमर आपसे मोहब्बत करेंगे। तीसरा उसूल ये है कि पैगाम को आसान बनाना है। ये जानना है कि आप इस मुज़ाकरे और नेगोशिएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप इससे आसान बनाना चाहते हैं या इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये आपके लिए बहुत अहम होना चाहिए कि ये दिलचस्पी ना हो, दिलचस्प हो, आसान अल्फाज में बात करें, मुख्तसर और ब्रीफली बात करें। चौथा, मुस्कुराहट है। बाज़ोगात आपके अज़ीज़ों का सवाल होता है कि उस्ताद आप मीटिंग्स में कभी को बार क्यों नर्वस हो जाते हैं। ये जानबूझकर भी होता है। हम जानते हैं कि कभी कभी आप मुस्कुराते भी हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ये एक बुनियादी बात है कि मैं मुस्कुराहट के साथ साथ आए कॉन्टैक्ट बना सकूं, मैं नर्वस हो सकूं, मैं रोक सकूं, मुझे इस कहानी से निमटना आना चाहिए। ये नेगोशिएशंस की टेक्निक है और अगर आप नेगोशिएशन को खुशी के साथ ले के चले तो ये ऑडियंस के लिए दिलचस्प हो जाए। यही वजह है कि आप वक्त का एहसास नहीं करते क्योंकि आप इंगेज हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजारते हैं। पांचवा उसूल एक ताकतवर स्टार्टिंग है। ताकतवर स्टार्टिंग और एंडिंग अहम है। छठा उसूल, कहानी सुनना, याददाश्त बयान करना, दिलचस्प कहानी सुनाना है। ये एक याददाश्त है जिसके एंडिंग पर आप कहानी की फातह है। मैंने पहली मीटिंग में 500 मैनेजर्स को देखा और मैंने प्रोडक्ट की पेशकश करने थी। पेशकश ख़त्म होने के बाद मैंने देखा कि 500 में से सब मेरे पास आए और कहा कि जनाब ये बेहतरीन था, शुक्रिया। मेरे अपने लिए ये एहसास बहुत अच्छा नहीं था लेकिन उनकी नज़र में ये शानदार था। मैंने अपने लिए जो शानदार तसव्वुर किया था वो उनकी नज़र में था और अगर मेरी शानदार कैसे होती तो। वो सब मेरे पास आए और कहा कि जनाब हम आपके साथ काम करना चाहता है। और अगले दिन हमने तमाम स्कूल्स के साथ मुआहदा किए। ये शानदार था, हम फातह हुई, हम कामयाब हुए, बहुत कुछ बेचा, बहुत नफा कमाया। लिहाजा आपको सिखाना चाहिए कि अगर आप कोई याददाश्त बयान करना चाहते हैं तो आखिर में आप फातह हैं या हारे हुए हैं। हर कोई कह सकता है कि मेरे पास कुछ तल्ख यादें हैं, यानी कहानी का अख्तिताम तल्ख हो जाता है। ये इस ऑडियंस के लिए दिलचस्प नहीं है जो आपकी पैरवी करना चाहता है और आपके साथ काम करना चाहता है। इस बात का ध्यान रखें, ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाएं। लिहाजा एक मजबूत और दिलचस्प स्टार्टिंग, मेरे प्रोडक्ट पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, कस्टमर की ज़रूरियात पर अटेंशन मरकूज रखे, बॉडी लैंग्वेज की मदद ले, स्पीच की टेक्निकें इस्तेमाल करें। ये सब कुछ आपको एक साथ इस्तेमाल करना होगा। वजाहत को आसान बनाएं, प्रोडक्ट की पेशकश में चंद मुतबादिल रखें। ये सब एक साथ हाँ आपको सिखाना चाहिए और मैं यकीन रखती हूँ कि आप सीखेंगे। अगर ये नोट्स, सारे नोट्स और पॉइंट्स की दुरुस्त तरीके से फॉलोअप करें तो बार बार प्रैक्टिस करें, ये एक दिन में हासिल नहीं होगे। प्रैक्टिस करें, अपने लिए लिखें, आउटलाइन बनाएं, एक स्क्रिप्ट करें, मटेरियल्स का मतन रखें, यहाँ तक के मैंने आपको फराहम किया है। अपने मुशीरों से तैयार करता मतन हासिल करें, पहले कॉल के लिए तैयार करते ٹیکس، شکریہ کیا میسیجز، یہ سب اپنے مشیروں سے حاصل کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کہانی کتنی خوبصورت بن رہے ہے۔ پازز بہت اہم ہیں، الفاظ جیسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی یہ کرتا ہوں لیکن اس پر زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بار جب ہم سوچتے ہیں کچھ پاز ہوتے ہیں، ان کو کم کرنے کی تلاش کریں۔ آپ کو یہ دوسروں میں بھی نظر آئے گا، جیسے جو آخر میں کھینچتا ہے تو ان کو ختم کرنے کی تلاش کریں۔ اب ہم فن بیان یا پبلک اسپیکنگ کی تکنیک کی طرف پہنچیں گے۔ ان پر بات کرو گا وقت کی پابندی کریں۔ اپنے پریزنٹیشن میں ثابت کریں کہ آپ وقت پر پہنچتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں۔ بھائی، وقت کی پابندی کریں، بی پنکچوئل۔ جو آپ نے کہا ہے کہ اس وقت حاضر رہے تو آپ کو بھی وقت پر آنا چاہیے۔ آپ کا وقت میرے وقت سے کیوں مختلف ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ امید ہے کہ یہ نکات پر استعمال کرے گے۔ پروڈکٹ کے بارے میں بھی کہ میں اپنی پریزنٹیشن میں کیا چیزیں بیان کروں اور اپنی سروسز کے بارے میں کیا بتاؤں، اس پر میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے، اس لیے اس پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں عمومی طور پر آگاہ رہیں کہ پریزنٹیشن میں آپ کو کیسے عمل کرنا ہے۔ آپ سب سے محبت ہے۔ آپ کا دن خوش ہو۔